रोते डायरी।
सभी श्रोताओं को नमस्कार। पूर्वोत्तर डायरी के इस नए अंक में आप सभी का स्वागत है। हर रविवार शाम 5:30 बजे इस कार्यक्रम में हम मिलते हैं और पूर्वोत्तर राज्यों की झलक आपके लिए लेकर आते हैं। आज फिर इस कार्यक्रम में हम पूर्वोत्तर राज्यों की रंगारंग संस्कृति से आपको परिचित करवाने के लिए हम उपस्थित हैं। आपके साथ मैं हूँ कमल कुमार प्रजापति।
पूर्वोत्तर डायरी।
विकास की राह में लगातार पूर्वोत्तर भारत आगे बढ़ता जा रहा है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 2 दिवसीय असम दौरा भी इसी कड़ी में एक महत्वपूर्ण दौरा रहा। प्रधानमंत्री ने असम को लगभग 47 लाख करोड़ से भी ज्यादा विकास परियोजनाओं की एक विशेष सौगात दी और माना जा रहा है कि कोकराझार, सिलचर, गुवाहाटी जैसे क्षेत्रों को मिलने वाली ये विकास की सौगात असम की प्रगति में एक बहुत बड़ा पड़ाव साबित होने जा रही है। हमारे सहयोगी अनिकेत ने एक रिपोर्ट तैयार की है जिसमें उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2 दिवसीय असम दौरे की विस्तार से चर्चा की है। साथ ही इस रिपोर्ट में उन्होंने बताया है कि प्रधानमंत्री ने असम में 47,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की परियोजनाओं की शुरुआत की। तो आइए ये रिपोर्ट सुनते हैं।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 13 और 14 मार्च को 2 दिन के असम दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने कोकराझार, गुवाहाटी और सिलचर में 47,800 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन, शिलान्यास और भूमि पूजन किया। साथ ही कुछ परियोजनाओं को हरी झंडी भी दिखाई। दौरे के पहले दिन प्रधानमंत्री ने कोकराझार में लगभग 4,570 करोड़ रुपए की परियोजनाओं से जुड़े कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। इसके बाद उन्होंने गुवाहाटी में करीब 19,680 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। दौरे के दूसरे दिन प्रधानमंत्री ने सुबह सिलचर में लगभग 23,550 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का भूमि पूजन किया। इन सभी पहलों का उद्देश्य राज्य में बुनियादी ढांचे को मजबूत करना, कनेक्टिविटी बढ़ाना और विकास कार्यों को गति देना है। कोकराझार में आयोजित कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विभिन्न विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखी। खराब मौसम के कारण वे स्वयं कार्यक्रम में शामिल नहीं हो सके और गुवाहाटी से लोगों को संबोधित करते हुए खेद व्यक्त किया। प्रधानमंत्री ने बोडो समुदाय के प्रमुख व्यक्तित्वों को नमन करते हुए उनकी भाषा, संस्कृति और परंपराओं की सराहना की। उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य की सरकारें मिलकर असम के विरासत को संरक्षित करते हुए तेज विकास सुनिश्चित करने के लिए काम कर रही है।
अभी कुछ सप्ताह पहले मैं गुवाहाटी में था। वहाँ मुझे बागुरुम्बा दहौ के भव्य उत्सव में समृद्ध बोडो संस्कृति का हिस्सा बनने का अवसर मिला। मुझे देखकर बहुत गर्व होता है कि बोडो समाज ने अपनी भाषा, अपनी संस्कृति और अपनी परंपराओं को इतना संभाल कर सहज कर रखा है। बाथौ की आध्यात्मिक परंपरा हो या बैसागु का उत्सव, ये सब भारत की सांस्कृतिक ताकत को और मजबूत बनाते हैं। भाजपा एनडीए की डबल इंजन सरकार भी असम की विरासत के संरक्षण और असम के तेज विकास दोनों के लिए निरंतर काम कर रही है।
परिवहन सुविधाओं में सुधार का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि बेहतर रेल और सड़क संपर्क से व्यापार, पर्यटन और किसानों की बाजारों तक पहुंच आसान होगी। उन्होंने कहा कि कोकराझार और आसपास के क्षेत्रों में अब शांति और विकास का नया दौर शुरू हो चुका है। प्रधानमंत्री ने बोडो शांति समझौते के महत्व को रेखांकित करते हुए कहा कि इसके तहत किए गए वादों को पूरा किया जा रहा है, जिसमें बोडो भाषा को सहयोगी राजभाषा का दर्जा और विशेष विकास पैकेज जैसी पहलें शामिल हैं। उन्होंने जनजातीय समुदायों की सांस्कृतिक पहचान को राष्ट्रीय स्तर पर सम्मान दिलाने के प्रयासों और स्थानीय लोगों को भूमि स्वामित्व उपलब्ध कराने की दिशा में उठाए गए कदमों का भी उल्लेख किया। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने विश्वास व्यक्त किया कि विकास कार्यों की गति तेज कर विकसित असम का लक्ष्य जनता के सहयोग से अवश्य हासिल किया जाएगा।
असम के विकास की गति को हमें निरंतर तेज करते रहना है और मैं जानता हूं कि असम की जनता के आशीर्वाद से विकसित असम का संकल्प जरूर सिद्ध होगा। इसी विश्वास के साथ मैं आप सभी को फिर से विकास परियोजनाओं के लिए अनेक अनेक शुभकामनाएं देता हूं।
कोकराझार में आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लेने के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने गुवाहाटी में करीब 19,500 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इस मौके पर उन्होंने एक जनसभा को संबोधित करते हुए लोगों, किसानों और चाय बागान श्रमिकों को शुभकामनाएं दी। उन्होंने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि भारत सरकार की परियोजनाओं का उद्देश्य राज्य में ऊर्जा क्षेत्र को मजबूत बनाना, कनेक्टिविटी को बढ़ाना और समग्र विकास को गति देना है। गुवाहाटी से प्रधानमंत्री ने किसानों के लिए पीएम किसान सम्मान निधि की 22वीं किस्त भी जारी की। उन्होंने कहा कि मुझे बहुत खुशी है कि ये योजना देश भर के हमारे छोटे किसानों को बहुत काम आ रही है। प्रधानमंत्री ने बताया कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत देश भर के किसानों के खातों में 18,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि स्थानांतरित की गई है। अब तक इस योजना के माध्यम से किसानों को कुल 4,25,000 करोड़ रुपए से अधिक की सहायता दी जा चुकी है, जबकि असम के लगभग 19 लाख किसानों को करीब 8,000 करोड़ रुपए मिल चुके हैं। उन्होंने कहा कि सरकार किसानों को सस्ती उर्वरक उपलब्ध कराने, सिंचाई सुविधाएं बढ़ाने और नई तकनीकों से जोड़ने पर काम कर रही है। उन्होंने सोलर पंप और कुसुम योजना तथा हर बूंद ज्यादा फसल जैसी पहलों का भी उल्लेख किया।
आज देश भर से किसान साथी माँ कामाख्या की इस धरती से जुड़े हैं। थोड़ी देर पहले करोड़ों किसानों के खाते में पीएम किसान निधि जमा होने के मैसेज हर एक के मोबाइल में पहुंच चुके। आज ऐसे करोड़ों किसानों के खाते में अब तक 4.25 लाख करोड़ रुपए से अधिक पैसे जमा हो चुका है। इसमें असम के भी करीब 19 लाख किसान हैं जिनको अभी तक लगभग 8,000 करोड़ रुपए मिल चुके हैं। सम्मान निधि की ये योजना देश के छोटे किसानों के लिए सामाजिक सुरक्षा का एक माध्यम बन गई।
ऊर्जा क्षेत्र के विस्तार पर जोर देते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि असम और पूरे पूर्वोत्तर में गैस पाइपलाइन नेटवर्क और रिफाइनिंग क्षमता बढ़ाने के लिए निवेश किया जा रहा है। नुमालीगढ़ सिलीगुड़ी पाइपलाइन के उन्नयन और गोलाघाट में बायो एथेनॉल संयंत्र जैसी परियोजनाओं को उन्होंने महत्वपूर्ण बताया। साथ ही लोअर कोपिली जल विद्युत परियोजना से क्षेत्र में ऊर्जा आपूर्ति और रोजगार के अवसर बढ़ने की उम्मीद जताई। प्रधानमंत्री ने चाय बागान श्रमिकों को भूमि पट्टे देने और उनके कल्याण के लिए उठाए गए कदमों का भी उल्लेख किया। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए निमाती घाट और विश्वनाथ घाट पर आधुनिक क्रूज टर्मिनल बनाने की शुरुआत को स्थानीय अर्थव्यवस्था और रोजगार के लिए अहम बताया। वरिष्ठ पत्रकार जगदीश उपासने ने प्रधानमंत्री के असम दौरे और इन नवीन परियोजनाओं के महत्व पर आकाशवाणी से बातचीत की। आइए सुनते हैं कि उनका इन परियोजनाओं को लेकर क्या कहना है।
प्रधानमंत्री के उत्तर पूर्व के दौरों को देखेंगे तो उन्होंने डेवलपमेंट के साथ वहाँ की संस्कृति को, सभ्यता को, लोकाचार को भी अपने दौरों के साथ देखा है। 2014 में जब से मोदी सरकार आई है तो लगभग 6.11 लाख करोड़ रुपए का खर्च और उत्तर पूर्व में विभिन्न योजनाओं पे, जिसमें कनेक्टिविटी है, जिसमें इलेक्ट्रिफिकेशन है, जिसमें एजुकेशन है, हेल्थ है, इंफ्रास्ट्रक्चर है और दूसरे रोड है। बजटरी अलोकेशन भी अगर आप देखेंगे तो 2004 से 2014 तक जो बजटरी अलोकेशन था उसमें 14 से 24 तक 381% बजटरी एलोकेशन बढ़ा है
जी।
और पिछले 4 सालों में ही अगर आप 2021 से 2025 तक के फिगर्स को देखें 3.20 लाख करोड़ का एलोकेशन था जिसमें 3.46 लाख करोड़ रुपए का खर्च हो चुका है। ये गवर्नमेंट की योजना है जिनका उद्घाटन हो चुका, चालू है।
असम के सिलचर में कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विभिन्न विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया और कहा कि इन पहलों से बराक घाटी की कनेक्टिविटी मजबूत होगी तथा क्षेत्र को लॉजिस्टिक और व्यापारिक केंद्र के रूप में विकसित होने में मदद मिलेगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि सड़क, रेल और शिक्षा से जुड़ी परियोजनाएं क्षेत्र में रोजगार और स्वरोजगार के नए अवसर सृजित करेंगी। उन्होंने लगभग 24,000 करोड़ रुपए की लागत वाले शिलांग सिलचर हाई स्पीड कॉरिडोर का उल्लेख करते हुए कहा कि इसमें असम के साथ साथ मिजोरम, मणिपुर और त्रिपुरा की भी कनेक्टिविटी बेहतर होगी और दक्षिण पूर्व एशिया के बाजारों तक पहुंच आसान बनेगी। प्रधानमंत्री ने विश्वास व्यक्त किया कि बेहतर कनेक्टिविटी, औद्योगिक अवसरों और पर्यटन विकास के साथ बराक घाटी भविष्य में पूर्वोत्तर के प्रमुख विकास केंद्रों में से एक बनकर उभरेगी। अनिकेत की रिपोर्ट के साथ जया भारती।
श्रोताओं, कुछ ही दिनों में सिक्किम फिल्म फेस्टिवल की शुरुआत होने जा रही है और इस सिलसिले में हाल ही में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई। हमारी सहयोगी श्रेया पाठक ने इस सिलसिले में ज्यादा जानकारी के लिए हमारे गंगटोक संवाददाता मानस प्रतिम शर्मा से बात की और ये जानने का प्रयास किया कि किस तरह से ये फिल्म महोत्सव इस बार एक ऐतिहासिक फिल्म महोत्सव होने जा रहा है और इस फिल्म महोत्सव में कौन सी वो फिल्में हैं जो मुख्य तौर पर आकर्षण का केंद्र रहने वाली हैं और क्या कुछ विशेष इस फिल्म महोत्सव में होगा। आइए हमारी सहयोगी श्रेया की मानस प्रतिम शर्मा के साथ ये बातचीत सुनते हैं।
गंगटोक में 19 से 22 मार्च तक पहले सिक्किम अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2026 का आयोजन होने जा रहा है। सिक्किम सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों ने आज गंगटोक में एक प्रेस मीट के दौरान यह जानकारी दी। इस महोत्सव को सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय और नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन का सहयोग प्राप्त है। कार्यक्रम के दौरान कुल 40 फिल्में प्रदर्शित की जाएंगी, जिनमें 2 अंतर्राष्ट्रीय फिल्में शामिल हैं। इस महोत्सव में 17 देशों के प्रतिनिधियों के साथ साथ बॉलीवुड के कई कलाकार और निर्देशक भी शामिल हो रहे हैं। इस पर ज्यादा जानकारी के लिए सीधे जुड़ते हैं हमारे गंगटोक संवाददाता मानस प्रतीम शर्मा जी के साथ। मानस प्रतीम शर्मा जी, आपका हमारे कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है।
जी, थैंक यू।
क्योंकि सिक्किम इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल पहली बार गंगटोक में आयोजित हो रहा है, तो यह कार्यक्रम राज्य और यहाँ के स्थानीय लोगों के लिए कितना महत्वपूर्ण है?
जी, आपने बहुत सही सवाल किया। जैसे सिक्किम में पहले से ही बॉलीवुड के या रीजनल फिल्म्स के प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर्स आते हैं या फिल्म शूट के लिए, लेकिन ये जो होगा ये एक अच्छा प्लेटफॉर्म होगा जो यहाँ के उभरते हुए कलाकार है, जो एक्टर है या प्रोड्यूसर है, डायरेक्टर है, जो फिल्म से जुड़े हुए हैं, जब बड़े लोग आएंगे यहाँ पे और यहाँ पे जो जितने भी एक्टिविटीज होंगे उसके जरिए यहाँ के युवा को, जो फिल्म से जुड़े हुए कलाकार, इनको एक प्लेटफॉर्म मिलेगा। और यही मेन आइडिया है कि यहाँ पे बने हुए फिल्म हो या यहाँ पे डॉक्यूमेंट्री हो, शॉर्ट फिल्म हो, उसको एक राष्ट्रीय स्तर पर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक मार्केट मिले या उनको एक रिकॉग्निशन मिले। और इसी कारण से ये फिल्म इंटरनेशनल, सिक्किम इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, जिसको सिफ कहते हैं, ये शुरू किया जा रहा है इस महीने के 19 तारीख से 4 दिन के लिए। और ये सिर्फ इसमें तो फिल्म का या डॉक्यूमेंट्री का तो प्रदर्शित होना ही है, साथ में जो मैंने कहा आपके सवाल से जुड़े हुए कि एक प्लेटफॉर्म होगा यहाँ के युवाओं के लिए। जी,
मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग और नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन इस फिल्म फेस्टिवल को सहयोग दे रहे हैं। इस आयोजन को सफल बनाने में सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय और नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन का सहयोग आप किस प्रकार देखते हैं और इसकी क्या भूमिका है?
जैसे बताया कि जो यहाँ के जो सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के वरिष्ठ अधिकारी हैं, उन्होंने प्रेस वार्ता को संबोधन किया और उन्होंने अपने बातचीत में, पत्रकार के साथ बातचीत में जहाँ हम भी मौजूद थे, उन्होंने कहा कि हम लोग के मंत्रालय और NFDC का बहुत आभार है कि ये जो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल होने जा रहे हैं और इसमें जितने भी लोग आएंगे, पहले मैं ये बताऊँ कि यहाँ अभी तक कुल मिला के 17 देशों से लोग आएंगे और यहाँ कुल सब मिला के 40 फिल्म और डॉक्यूमेंट्री प्रदर्शित होंगे, जिसमें से खासतौर पर यह है कि 2 जो डॉक्यूमेंट्री होंगे वो आर्टिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बनाया हुआ है, तो ये भी देखने लायक होगा कि अब जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी हर क्षेत्र में आ गए हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो ये फिल्म क्षेत्र में क्या कैसे फिल्म बनाएंगे, ये भी एक हम लोग के लिए देखने लायक होगा। तो कुल मिलाकर जितने भी एम्बेसीज हो या हाई कमिश्नर के ऑफिसेस हो, इन लोग के साथ सहयोग करना, फिल्म को वहां के लोगों से बातचीत करना, और बाकी जितने भी सपोर्ट है इससे जुड़े हुए सब मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग और एनएफडीसी के जरिए ही लिया गया है यहाँ के। तो देखने लायक होगा ये आने वाले दिनों में भी कि यहाँ के युवाओं को ये फेस्टिवल के जरिए कैसे इस फिल्म लाइन से, प्रोडक्शन से, ब्रॉडकास्टिंग से कैसे जुड़ा जाए। तो कुल मिला के इस, क्योंकि ये कुछ दिनों के बाद शुरू होगा, हम लोग को यही भी सुनने को मिल रहा है कि एमआईबी के वरिष्ठ अधिकारी और एनएफडीसी के प्रतिनिधि भी यहाँ आएंगे, तो उन लोग से भी लोग यहाँ के युवा बातचीत करेंगे, पत्रकार बातचीत करेंगे शायद, जैसे कि सुनने को आ रहे हैं, तो वो भी डेफिनेटली अपने जो एक्सपर्टाइज लेके आएंगे तो यहाँ के युवा को प्रोत्साहन करेंगे।
जी बिल्कुल, इस फेस्टिवल में जैसे कि 40 फिल्में दिखाई जाएंगी जिनमें 2 अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार जीत चुकी फिल्में भी शामिल हैं। आम लोग इन फिल्मों को देखने के लिए टिकट कैसे ले सकते हैं और या उन्हें देखने का उन्हें मौका कैसे मिलेगा?
यहाँ पे कुल 3 जगह पे ये फेस्टिवल होगा जो तीनों ही गांधीनगर शहर में ही है। यहाँ पे एक इनॉगरल सेशन होगा, उसमें जो होगा वो हम लोग जानते हैं देश के मशहूर जो निर्माता थे, डायरेक्टर थे, पश्चिम बंगाल से सत्यजीत रे, उनके द्वारा निर्मित एक डॉक्यूमेंट्री थी, उनका नाम था सिक्किम। ये 1971 में बने थे, तब सिक्किम भारत का हिस्सा नहीं था, तो सत्यजीत राय साहब के जो करियर है उसको समर्पित करते हुए, सभी जानते हैं उसमें असत्य की बात नहीं है, कितने एक पुरोधा व्यक्ति है सत्यजीत राय पूरे दुनिया के लिए। तो ये सिक्किम से ये महोत्सव शुरू होगा, उसके बाद और 2 जगह होंगे जहाँ पे ये कुल फिल्में दिखाई जाएंगे। यहाँ पे भारत में भी निर्मित फिल्म है और विदेशों में निर्मित फिल्म भी है, और तो जैसे मैंने बताया जो AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बनी हुई 2 फिल्म डॉक्यूमेंट्री भी यहाँ पे रहेंगे। तो कुल मिलाकर इन 3 जगह पे ये होगा, लेकिन बाकी जो एक्टिविटीज होंगे जैसे यहाँ पे एक सीप मार्केट बोल के होंगे, जो प्लेटफॉर्म होगा बातचीत करने के लिए, वो एक जगह पे होगा, या एक वेस्ट पॉइंट मॉल बोल के है, वहाँ पे हम लोग फिल्म देख पाएंगे, डॉक्यूमेंट्री देख पाएंगे। तो अलग अलग जगह से ये प्लानिंग किया गया है कि पूरे कार्यक्रम को अच्छी तरह से यहाँ पे रूप दिया जाए।
मेरा आपसे आखिरी प्रश्न ये है कि इस फेस्टिवल में 17 देशों के प्रतिनिधि और कई बॉलीवुड अभिनेता निर्देशक शामिल होने वाले हैं, ऐसे में इस समय गैंगटॉक का माहौल आप कैसा देख रहे हैं?
जी अभी तो धीरे धीरे माहौल बन रहा है, जैसे अब पहले तो ये मैं सबको बताना चाहूंगा, जैसे हम लोग जानते भी है कि सिक्किम गैंगटॉक ये पर्यटकों के लिए हमेशा खुला रहता है, अभी भी गैंगटॉक में और बाकी जगह में पर्यटक भरे हुए हैं, और यहाँ के खासकर युवा में इस महोत्सव को लेकर काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। कि जैसे आपने जिक्र किया बॉलीवुड से फरहान अख्तर आएंगे, इम्तियाज अली आएंगे, अभिषेक बनर्जी आएंगे, और ऐसे भी बहुत सारे कलाकार आएंगे, कलाकार नहीं स्टार सुपरस्टार भी है ये लोग, तो इन लोग को देख पाएंगे, बातचीत कर पाएंगे, सुन पाएंगे, तो इसलिए मुझे लगता है और कुछ दिनों के बाद जब हम लोग धीरे धीरे इस कार्यक्रम के नजदीक आएंगे, लोगों में उत्साह और बढ़ेगा, और ये 3-4 दिन एक पूरा उत्साह का माहौल फेस्टिवल देखने को मिलेगा ये फिल्म महोत्सव को लेकर। तो हम भी उम्मीद करते हैं कि इसमें हम लोग भी यहाँ पे जोड़ पाएंगे।
इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ने के लिए मानस प्रतीम शर्मा जी, आपका हार्दिक अभिनंदन। और आपने हमें बताया कि जो यह सिक्किम अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2026 का आयोजन जो गैंगटॉक में होने जा रहा है 19 से 22 मार्च तक, इसके बारे में हमें जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
श्रोताओं, अब हम आपको लिए चलते हैं अरुणाचल प्रदेश। पिछले सप्ताह भी हमने अरुणाचल प्रदेश में विधानसभा सत्र की एक विशेष रिपोर्ट आपको सुनवाई थी, तो इस बार भी हम आपको अपने संवाददाता मनोज कुमार शर्मा से ये खास रिपोर्ट सुनवाने जा रहे हैं, जिसमें उन्होंने अरुणाचल विधानसभा सत्र में पारित 2026-27 के बजट की विस्तार से चर्चा की है। तो आइए ये खास रिपोर्ट आपको सुनवाते हैं।
8वीं अरुणाचल प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र 2026-27 गत 6 से 12 मार्च तक ईटानगर में आयोजित किया गया। अरुणाचल प्रदेश विधानसभा ने सदन में 2 दिनों की चर्चा के बाद ध्वनिमत से वर्ष 2026-27 के लिए 36,607 करोड़ रुपए का राज्य बजट पारित किया। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने राज्य बजट 2026-27 की मुख्य प्राथमिकताओं पर प्रकाश डालते हुए चर्चा में सदस्यों की रचनात्मक भागीदारी के लिए उन्हें धन्यवाद दिया। उप मुख्यमंत्री एवं वित्त प्रभारी मंत्री चौना मेन ने कहा है कि सॉल्व वित्त आयोग की सिफारिशें राज्य की वित्त स्थिति को प्रभावित करेंगी। उप मुख्यमंत्री ने अरुणाचल प्रदेश विनियोग संख्या 2 विधेयक 2026 पेश किया। इसके बाद सदन ने विधेयक पर विचार कर उसे पारित किया, जिससे सरकार को वित्त वर्ष 2026-27 के लिए राज्य की समेकित निधि से धनराशि निकालने का अधिकार प्राप्त हुआ है। सदन ने 5 विधेयक पारित किए, जिसमें अरुणाचल प्रदेश विधानसभा सदस्यों के वेतन भत्ते और पेंशन संशोधन विधेयक 2026 भी शामिल है। ये विधेयक निर्वाचित विधायकों के लिए पेंशन का पात्र होने हेतु अनिवार्य 4 वर्षीय कार्यकाल की शर्त को समाप्त करता है। इसके अलावा मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने कहा है कि अरुणाचल प्रदेश और असम के बीच अंतर्राज्यीय सीमा का सर्वेक्षण और सीमांकन करने की प्रक्रिया चरणबद्ध तरीके से शुरू हो गई है। दशकों पुराने इस विवाद को सुलझाने के प्रयासों के तहत पहला सीमा स्तंभ भी स्थापित किया जा चुका है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि पाके केसांग जिले को पहले ऐसे जिले के रूप में चुना गया है जहां सीमा स्तंभ स्थापित किया गया है। अरुणाचल विधानसभा ने राज्य में मानव वन्य जीव संघर्ष का अध्ययन और समीक्षा करने के लिए एक कालिक मूल्यांकन समिति का गठन किया है। इस समिति के सदस्यों में विधायक वांगलिंग लुआंगदोंग, कुमार बाई, डॉक्टर मोहेश चाय, तोपिन अत, शेरिंग लामू और प्रधान मुख्य वन संरक्षक के सदस्य सचिव शामिल है। ये समिति 3 महीने के भीतर अपनी रिपोर्ट अध्यक्ष को सौंपेंगी। इसके अलावा बुनियादी शिक्षा को सुदृढ़ करने के लिए एक व्यापक राज्य प्रारंभिक बाल देखभाल एवं शिक्षा नीति लागू की गई है। इसमें स्थानीय भाषाओं के संरक्षण और संवर्धन पर विशेष ध्यान केंद्रित किया जाएगा। पूर्वोत्तर डायरी के लिए आकाशवाणी ईटानगर से मैं मनोज कुमार शर्मा।
श्रोताओं, सिक्किम के विकास में यहाँ की सेवोक रंगपो रेल परियोजना आने वाले समय में विकास की एक धुरी बनने जा रही है। विकास और पर्यटन के लिए ये रेल परियोजना एक महत्वपूर्ण पड़ाव साबित होगी। माना जा रहा है कि 2027 में ये परियोजना पूरी होगी। हाल ही में मीडिया के प्रतिनिधिमंडल से मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग ने एक विशेष वार्ता में इसकी जानकारी दी। तो ये परियोजना क्या है और किस तरह से सिक्किम, जो सड़क मार्ग पर निर्भर एक राज्य है, वहाँ विकास की कैसे नई कहानी लिखने वाली है, इस बारे में हम इस रिपोर्ट में विस्तार से जानते हैं।
हाल ही में सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग गोले ने कहा है कि सिवोक रंगपो रेल परियोजना राज्य की संपर्क व्यवस्था को बदलने वाली एक महत्वपूर्ण परियोजना है। उनके अनुसार इस परियोजना के पूरा होने से सिक्किम में आवागमन की सुविधा बेहतर होगी, पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और राज्य के आर्थिक विकास को नई गति मिलेगी। मुख्यमंत्री ने ये बात गंगटोक में पत्र सूचना कार्यालय शिलोंग द्वारा आयोजित एक प्रेस भ्रमण कार्यक्रम के तहत सिक्किम आए मेघालय के पत्रकारों के एक प्रतिनिधि मंडल से बातचीत के दौरान कही। उन्होंने कहा कि ये रेलवे परियोजना सिक्किम के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित होगी, क्योंकि इसके माध्यम से पहली बार राज्य को देश के राष्ट्रीय रेल नेटवर्क से जोड़ा जाएगा। मुख्यमंत्री के अनुसार रेल संपर्क बेहतर होने से इस पहाड़ी राज्य तक यात्रा करना अधिक आसान हो जाएगा। इससे स्थानीय लोगों के साथ साथ पर्यटकों को भी सुविधा मिलेगी और पर्यटन तथा आर्थिक गतिविधियों में वृद्धि होगी। मुख्यमंत्री ने बताया कि सिवोक रंगपो रेल लाइन का निर्माण पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे द्वारा किया जा रहा है। इस रेल लाइन की कुल लंबाई 45 किलोमीटर है। इसमें से करीब 41.5 किलोमीटर हिस्सा पश्चिम बंगाल में और लगभग 3.5 किलोमीटर हिस्सा सिक्किम में स्थित है। कठिन पहाड़ी भूभाग के कारण इस परियोजना में 14 सुरंगों और 23 पुलों का निर्माण किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस रेल लाइन के शुरू होने के बाद क्षेत्र में परिवहन और माल ढुलाई की व्यवस्था काफी बेहतर हो जाएगी। यात्रियों के साथ साथ सामान की आवाजाही भी अधिक सुगम होगी। उन्होंने कहा कि इससे पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे और क्षेत्र के समग्र विकास को बल मिलेगा। मुख्यमंत्री ने पत्रकारों को ये भी बताया कि परियोजना का कार्य लगातार आगे बढ़ रहा है और उम्मीद है कि इसे वर्ष 2027 तक पूरा कर लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि इसके पूरा होने से सिक्किम की लंबे समय से चली आ रही संपर्क संबंधी समस्याओं का समाधान होगा, क्योंकि फिलहाल राज्य मुख्य रूप से सड़क मार्ग पर ही निर्भर है। उन्होंने कहा कि ये परियोजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस दृष्टिकोण को भी दर्शाती है, जिसके तहत पूर्वोत्तर क्षेत्र में संपर्क व्यवस्था को मजबूत करने और विकास को तेज करने पर विशेष जोर दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री के अनुसार प्रधानमंत्री के नेतृत्व में दूर दराज और सीमावर्ती राज्यों में बुनियादी ढांचे को मजबूत बनाना प्राथमिकता रही है और इसके लिए सड़क, रेल तथा हवाई संपर्क से जुड़ी कई महत्वपूर्ण परियोजनाएं लागू की जा रही हैं। मुख्यमंत्री ने विश्वास व्यक्त किया कि सिवोक रंगपो रेल परियोजना सिक्किम की संपर्क व्यवस्था को नया रूप देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी और इससे राज्य में आर्थिक अवसरों के नए द्वार खुलेंगे, साथ ही पर्यटन और क्षेत्रीय विकास को भी मजबूती मिलेगी। हमारे सिक्किम संवाददाता की रिपोर्ट के साथ पूर्वोत्तर डायरी के लिए मैं मनोज।
पर्यावरण को बचाने के लिए बहुत से समाज सेवी समय समय पर ऐसी प्रेरणादायी पहल करते हैं जो वास्तव में हमें प्रेरित करती है। एक ऐसी ही पहल हुई है अगरतला त्रिपुरा में और इस पहल में अगरतला से कन्याकुमारी तक इतनी लंबी यात्रा साइकिल के जरिए पूरी करने का एक कारनामा यहाँ के समाज सेवियों ने किया है। तो हम अपने श्रोताओं को इस रिपोर्ट में यही कहानी सुनवाने जा रहे हैं कि किस तरह से पर्यावरण संरक्षण के प्रति सजग आज के समाज सेवी अपनी नई और रोचक यात्राओं से कैसे पर्यावरण को बचाने का एक नया संदेश दे रहे हैं। तो आइए इस रिपोर्ट में हम पर्यावरण संरक्षण की इस पहल के बारे में विस्तार से जानते हैं।
आज के समय में आधुनिक सुविधाएं तो बढ़ रही हैं, लेकिन इसके कारण पर्यावरण का संतुलन भी बिगड़ रहा है। इसलिए पर्यावरण अनुकूल जीवन शैली अपनाना पहले से ज्यादा जरूरी हो गया है। दुनिया भर में लोग और समुदाय प्रकृति को बचाने और टिकाऊ जीवन शैली अपनाने के लिए आगे आ रहे हैं। अगरतला में अगरतला साइक्लोहोलिक फाउंडेशन के साइकिल प्रेमियों का एक समूह भी इसी दिशा में काम कर रहा है। हाल ही में इस क्लब के दो वरिष्ठ सदस्यों ने पर्यावरण संरक्षण और स्वस्थ जीवन का संदेश देने के लिए अगरतला से कन्याकुमारी तक के एक प्रेरणादायक साइकिल यात्रा की। उन्होंने 56 दिनों में लगभग 5,300 किलोमीटर की दूरी तय की। ये उनकी प्रेरक कहानी है। तेजी से बढ़ते शहरीकरण और आरामदायक जीवन की बढ़ती चाहत के कारण प्रकृति और प्राकृतिक संसाधनों पर दबाव लगातार बढ़ रहा है। जीवाश्म ईंधन तेजी से खत्म हो रहे हैं और टिकाऊ विकल्पों की जरूरत अब बहुत ज्यादा महसूस की जा रही है। ऐसे में साइकिल चलाना एक आसान, स्वस्थ और पर्यावरण के अनुकूल साधन है। त्रिपुरा में अगरतला साइक्लोहोलिक फाउंडेशन लोगों को साइकिल चलाने के लिए प्रेरित कर रहा है और उन्हें कार्बन न्यूट्रल जीवन शैली अपनाने के लिए जागरूक भी कर रहा है। इस पहल को प्रसिद्ध पर्यावरणविद और पत्रकार डॉक्टर बिस्वेंदु भट्टाचार्य जी का भी समर्थन मिला है। वे टिकाऊ जीवन शैली के समर्थक हैं और अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण अभियानों में भी सक्रिय रूप से भाग लेते हैं। इस सोच को आगे बढ़ाते हुए क्लब के दो अनुभवी सदस्य 66 वर्षीय चंदन भौमिक और 59 वर्षीय अजय कुमार साहा ने इस साल की शुरुआत में एक खास मिशन शुरू किया। जनवरी में दोनों ने अगरतला से भारत के सबसे दक्षिणी छोर कन्याकुमारी तक साइकिल यात्रा शुरू की। अलग अलग राज्यों, रास्तों और मौसम की चुनौतियों का सामना करते हुए उन्होंने 56 दिनों में करीब 5,300 किलोमीटर की दूरी तय की। वे हर दिन औसतन 100 से 120 किलोमीटर साइकिल चलाते रहे। उनकी इस यात्रा ने साबित कर दिया कि अगर उद्देश्य अच्छा हो और इरादा पक्का हो तो उम्र कभी बाधा नहीं बनती। उनका लक्ष्य था पर्यावरण संरक्षण और टिकाऊ जीवन शैली का संदेश फैलाना। ये शानदार यात्रा आखिरकार 1 मार्च की शाम को गांधी मंडपम में जाकर पूरी हुई। उनकी इस उपलब्धि ने एक मजबूत संदेश दिया कि पर्यावरण की रक्षा हमारे छोटे छोटे रोजमर्रा के फैसलों से शुरू होती है। इन दो वरिष्ठ साइकिल चालकों की प्रेरणादायक यात्रा ने न केवल पर्यावरण संरक्षण का महत्व बताया बल्कि लोगों को स्वस्थ और पर्यावरण अनुकूल आदतें अपनाने के लिए भी प्रेरित किया। उनकी कहानी हमें ये याद दिलाती है कि छोटे छोटे कदम या इस मामले में साइकिल के पैडल भी एक हरे भरे और बेहतर भविष्य की दिशा में बड़ा बदलाव ला सकते हैं। पूर्वोत्तर डायरी के लिए अगरतला से सुमन भट्टाचार्य जी की रिपोर्ट के साथ मैं आकर्षिता सिंह।
हे
श्रोताओं, आज के कार्यक्रम का अंक यहीं तक। आप अपनी प्रतिक्रिया और सुझाव हम तक पहुंचाते रहिए। हमारी ईमेल आईडी और हमारा व्हाट्सएप नंबर आप नोट कर सकते हैं, जिसके माध्यम से आप अपने सुझाव हम तक पहुंचा सकते हैं। ईमेल आईडी है airnsdtalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044। अगले सप्ताह पूर्वोत्तर भारत की कुछ और झलकियों के साथ हम आपके बीच होंगे पूर्वोत्तर डायरी कार्यक्रम के एक नए अंक में। हमें अनुमति दें, नमस्कार। आलेख व संकलन कमल कुमार प्रजापति, प्रस्तुति सहायक दानिश जैदी। पूर्वोत्तर।